दानियल की पुस्तक संख्या 87 दस कुमारियों के दृष्टांत का अनावरण एडवेंटिस्ट इतिहास की एक गहन यात्रा।
दस कुमारियों का दस दृष्टांत एडवेंटिस्ट लोगों के अनुभव को दर्शाता है।
मत्ती 87 की दस कुवरारियों का दृष्टांत भी एडवेंटिस्ट लोगों के अनुभव को चित्रित करता है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 393
मिलराइट एडवेंटिस्टों ने उस दृष्टांत को अक्षरशः पूरा किया।
मुझे प्रायः दस कुनावरियों के दृष्टांत की ओर संकेत किया जाता है, जिनमें से पांच बुद्धिमान थीं और पांच मूर्ख। ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हुआ है और होगा, क्योंकि इसका विशेष अनुप्रयोग इसी समय के लिए है और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समान ये पूरा हुआ है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू एंड हेरल्ड ऑगस्ट 1890
पहले स्वर्गदूत के आंदोलन का इतिहास तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है और दृष्टांत का अंतिम केंद्र बिंदु यह है कि कुंवारियों के पास तेल है या नहीं, जो कि पश्चात वर्षा का संदेश है।
एक संसार दुष्टता, छल और भ्रम में पड़ा है, मृत्यु की छाया में सोया हुआ। कौन है जो उन्हें जगाने के लिए आत्मिक पीड़ा महसूस कर रहा है? कौन सी आवाज उन तक पहुंच सकती है? मेरा मन भविष्य की ओर चला जाता है जब यह संकेत दिया जाएगा, देखो दूल्हा आ रहा है, इससे मिलने के लिए बाहर निकलो। परंतु कुछ लोग अपने दियों को फिर से भरने के लिए तेल लेने में देर कर देंगे और बहुत देर से उन्हें पता चलेगा कि तेल द्वारा जिसका प्रतिनिधित्व किया गया है वह चरित्र हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। वह तेल मसीह की धार्मिकता है, वह चरित्र का प्रतीक है और चरित्र हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति इसे किसी और के लिए प्राप्त नहीं कर सकता। हर एक को अपने लिए ऐसा चरित्र प्राप्त करना होगा जो पाप के हर दाग से शुद्ध किया गया हो। बाइबल इको 4 मई 1896
दृष्टांत में तेल चरित्र का और साथ ही मसीह की धार्मिकता का भी प्रतीक है। एक पवित्रीकृत चरित्र केवल उन्हीं में विकसित होता है जो परमेश्वर का वचन खाते हैं।
उन्हें अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17
तेल ईश्वर की आत्मा के संदेश भी है।
जब हम उन संदेशों को ग्रहण नहीं करते जो वे हमें भेजते हैं, तब परमेश्वर का अनादर होता है। इस प्रकार हम उस स्वर्णिम तेल को अस्वीकार कर देते हैं जिसे वे हमारी आत्माओं में उंडेलना चाहते हैं, ताकि उसे अंधकार में पड़े लोगों तक पहुंचाया जा सके। रिव्यू एंड हेरल्ड 20 जुलाई 1879
तेल परमेश्वर के वचन के वे संदेश है जो मसीह की धार्मिकता की पवित्र करने वाली उपस्थिति को संप्रेषित करते हैं। दस कुमारियों के दृष्टांत में, जो हबक्कूक के दूसरे अध्याय की भविष्यवाणी भी है, मध्य रात्रि की पुकार का संदेश, जो मसीह की धार्मिकता का ही संदेश है, 1888 के विद्रोह में जॉन्स और वैगनर के संदेश द्वारा निरूपित है।
प्रभु ने अपनी महान दया में एल्डर्स वैगनर और जोन्स के माध्यम से अपने लोगों के लिए एक अत्यंत मूल्यवान संदेश भेजा। ये संदेश संसार के सामने ऊंचा उठाया गया उद्धारकर्ता, जो समस्त संसार के पापों के लिए बलिदान है, को और अधिक प्रमुखता से प्रस्तुत करने के लिए था। इसने जामिन पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने को प्रस्तुत किया। इसने लोगों को मसीह की धार्मिकता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, जो परमेश्वर की सब आज्ञाओं के पालन में प्रकट होती है। बहुतों की दृष्टि यीशु से हट गई थी। उनकी आंखों को उसके दिव्य व्यक्तित्व, उसके गुणों और मानव परिवार के प्रति उसके अपरिवर्तनीय प्रेम की ओर मोड़ा जाना आवश्यक था। समस्त सामर्थ्य उसके हाथों में दे दिया गया है, ताकि वो मनुष्यों को उदार वरदान बांटे और असहाय मानव अभिकर्ता को अपनी ही धार्मिकता का अमूल्य उपहार प्रदान करे। यही वो संदेश है जिसे परमेश्वर ने संसार को देने की आज्ञा दी है। ये तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है, जिसे ऊंची आवाज में घोषित किया जाना है और जिसके साथ उसके आत्मा का बड़े परिमाण में उंडेला जाना होगा। टेस्टिमोनीज टू मिनिस्टर्स 91
वह संदेश अंतिम वर्षा का संदेश है।
पिछली वर्षा परमेश्वर की प्रजा पर बरसने वाली है। एक सामर्थी स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरने वाला है और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से प्रकाशित हो जाएगी। रिव्यू एंड हेरल्ड 21 अप्रैल 1891
जब शक्तिशाली स्वर्गदूत 11 सितंबर 2001 को उतरा, तो अंतिम वर्षा की फुहारें पड़ने लगीं और दस कुंवारियों के दृष्टांत तथा हबक्कूक के दूसरे अध्याय में दर्शाए गए मिलरवादियों का इतिहास दोहराया जाने लगा।
तब परमेश्वर के अंतिम दिनों के लोगों ने स्वर्गदूत के हाथ में जो पुस्तक थी उसे खा लिया, और ऐसा करते हुए वे यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर लौट आए, और इस प्रकार वे चेतावनी का नरसिंगा फूंकने वाले पहरेदार बन गए। ये नरसिंग की चेतावनी लाओदिकिया का संदेश था, जिसे यशाया ने तेज पुकार के रूप में दर्शाया।
पूरे गले से पुकार, मत रुक, अपनी आवाज नरसिंह के समान ऊंची कर, और मेरी प्रजा को उनका अपराध और याकूब के घराने को उनके पाप दिखा। यशाया 58:1।
पहले और तीसरे स्वर्गदूतों का सुधार आंदोलन अंत के समय में आरंभ होता है। उस समय ज्ञान में वृद्धि होती है, जो तब जीवित पीढ़ी की परीक्षा करेगी, परंतु केवल तब जब उस ज्ञान को एक औपचारिक संदेश के रूप में प्रकाशित किया जा चुका होगा। इसके पश्चात वो औपचारिक संदेश सशक्त किया जाता है, और इस सशक्तिकरण का चिन्ह एक स्वर्गदूत का अवतरित होना होता है। स्वर्गदूत का ये अवतरण हबक्कूक के विवाद की पहचान कराता है, और दो वर्ग एक ऐसे संदेश की पहचान करने लगते हैं जो या तो अंतिम वर्षा का सच्चा संदेश होता है या उसका नकली। तब विश्वास योग्य लोग परमेश्वर के प्रहरी बन जाते हैं, जो चेतावनी की तुरही बजाना शुरू करते हैं। सच्चा तुरही संदेश हबक्कूक की दो तालिकाओं पर दर्शाए गए प्रकाश पर आधारित है। ये लौदिकिया के लिए चेतावनी है, और वो चेतावनी भी जो परमेश्वर की प्रजा के पापों की पहचान कराती है। वाद विवाद बढ़ता जाता है जब तक कि पहली निराशा नहीं आती, जब एक वर्ग उपहास करने वालों की सभा बन जाता है और सच्चे पहरेदारों को उस उत्साह में लौटने के लिए बुलाया जाता है जो वे निराशा से पहले संदेश के लिए प्रदर्शित करते थे। जब पहरेदार लौटे तो उन्होंने पहचाना कि वे विलंब के समय में हैं, और कि जो संदेश असफल हो गया प्रतीत होता था वो वास्तव में पूरा होने जा रहा था, परंतु परमेश्वर के क्रम में। वो संदेश थोड़े से समय में विकसित हुआ, फिर भी वो एक अवधि थी, और जब वो संदेश आता है तो उसे आधी रात की पुकार के संदेश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो बस उसी संदेश का बढ़ा हुआ रूप है जिसे बल मिलना तब शुरू हुआ था जब स्वर्गदूत उतरा।
संदेश के आगमन पर स्वर्गदूत के अवतरण के समय पहरेदार की भूमिका स्वीकार करने वालों और इसे अस्वीकार करने वालों के बीच विभाजन पूरी तरह संपन्न हो गया। वही विभाजन उस बिंदु को चिन्हित करता है जहां 144,000 पर मुहर अंकित की जाती है, उस अंतिम वर्षा के उंडेले जाने से पहले, जिसमें वो मापन नहीं है जो उस अंतिम वर्षा पर लागू किया गया था जो स्वर्गदूत के अवतरण पर आरंभ हुई थी।
मिलराइटों का इतिहास 144,000 की मुहरबंदी के दौरान होने वाली अंतिम वर्षा का एक उदाहरण है। उस इतिहास में हबक्कूक की बहस एक सच्चे और एक झूठे अंतिम वर्षा संदेश पर आधारित थी। पौलुस एक वर्ग की पहचान उन लोगों के रूप में करता है जो सत्य से प्रेम रखते हैं, और दूसरे वर्ग की पहचान उन लोगों के रूप में करता है जो प्रबल भ्रम प्राप्त करते हैं क्योंकि वे सत्य से प्रेम नहीं रखते और क्योंकि उन्होंने एक झूठ पर विश्वास किया है।
मिलराइट आंदोलन सत्य के ऐसे विकास का प्रतिनिधित्व करता है जो अंत के समय से प्रारंभ होकर ज्ञान और शक्ति में बढ़ता हुआ मध्य रात्रि की पुकार के समय पवित्र आत्मा के उंडेले जाने तक पहुंचता है। मिलराइट आंदोलन ने कुछ विशिष्ट मार्ग चिन्हों की पहचान की जिनका समानांतर क्रम इस प्रकार है। अंत का समय ज्ञान की बढ़ोतरी द्वारा दर्शाया गया संदेश का औपचारिककरण, एक स्वर्गदूत के उतरने से चिह्नित संदेश का सशक्तिकरण, 10 कुमारियों के दृष्टांत का परिचय कराने वाली पहली निराशा, मध्यरात्रि की पुकार के रूप में प्रदर्शित पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, और फिर अंतिम दूसरी निराशा जहां एक युग संबंधी द्वार बंद होता है और दूसरा युग संबंधी द्वार खोला जाता है।
परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य 14 के संदेशों को भविष्यवाणी के क्रम में उनका स्थान दिया है, और उनका कार्य इस पृथ्वी के इतिहास के अंत तक समाप्त नहीं होना है। पहले और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश इस समय के लिए अब भी सत्य हैं, और जो इसके बाद आता है उसके साथ समानांतर चलना है। तीसरा स्वर्गदूत अपनी चेतावनी ऊंचे स्वर में घोषित करता है। इन बातों के बाद यूहन्ना ने कहा, मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके पास बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसकी महिमा से आलोकित हो गई। इस आलोक में तीनों संदेशों का प्रकाश संयुक्त है। द 1888 मटीरियल्स, आत्सौर,
मिल्रवादी आंदोलन जो 144,000 के आंदोलनों का प्रतिरूप है, दानियल अध्याय 8 पद 13 और 14 में उल्लिखित 2300 वर्ष और 2520 वर्ष की भविष्यवाणियों से गुंथा हुआ था। अंत का समय इज़राइल के उत्तरी राज्य के विरुद्ध परमेश्वर के रोष के 7 समय के पूर्ण होने पर आ पहुंचा। 1831 में मिल्लर के संदेश का औपचारिककरण किंग जेम्स बाइबल के प्रकाशन के 220 वर्ष बाद आया।
श्री मिलर, अन्य देशों में इस संदेश से प्रेरित होकर आगे बढ़े लोगों की तरह पहले ये सोचा कि वे अपने दायित्व को समाचार पत्रों और पुस्तिकाओं में लिखकर और प्रकाशित करके पूरा करेंगे। उन्होंने पहली बार अपने विचार वर्मोंट टेलीग्राफ में प्रकाशित किए, जो ब्रैंडन वर्मोंट में मुद्रित होने वाला एक बैपटिस्ट पत्र था। ये सन 1831 की बात है। जॉन लॉक पैरा, द ग्रेट सेकेंड एडवेंट मूवमेंट, 120।
तीसरे स्वर्गदूत के समय के अंत का आंदोलन। 1989 में 1863 के विद्रोह से 126 वर्ष पूरे होने पर आ गया। 126 सात समय का प्रतीक है। दोनों आंदोलनों की शुरुआत सात समय की एक पूर्ति से हुई। तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन का संदेश 1996 में औपचारिक रूप से स्थापित किया गया, जब द टाइम ऑफ द एंड शीर्षक की लेखमाला आवर फर्म फाउंडेशन नामक पत्रिका में प्रकाशित की गई। वे लेख 1776 की स्वतंत्रता की घोषणा के 220 वर्ष बाद प्रकाशित हुए थे। दोनों आंदोलनों का संदेश उस इतिहास के 220 वर्ष बाद औपचारिक रूप दिया गया, जो सीधे उस संदेश से जुड़ा था जो उन्हीं 220 वर्षों के अंत में आया। संख्या 220 77 सनेथसन ईसा पूर्व में आरंभ हुए यहूदा के दक्षिणी राज्य के विरुद्ध परमेश्वर के रोष के 7 समय और 755 ईसा पूर्व में दानियल अध्याय 8 पद 14 के 2300 वर्षों के आरंभ, इन दोनों के बीच की कड़ी लिंक का प्रतिनिधित्व करती है। 220 की संख्या इन दोनों भविष्यवाणियों को आपस में जोड़ती है, और ये दोनों भविष्यवाणियां एडवेंटवाद के आधारभूत पदों में साथ साथ प्रस्तुत की गई थीं, जो दानियल अध्याय 8 पद 13 और 14 है। उन्हीं पदों में मसीह ने स्वयं को भविष्य सूचक रूप से वह निश्चित पवित्र जन के रूप में प्रस्तुत किया, जो इब्रानी शब्द पालमोनी का अनुवाद है, जिसका अर्थ अद्भुत गणनाकार है। अद्भुत गणनाकर्ता उन दो दर्शनों का परिचय कराता है जो भविष्यवाणी की दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो भी उन्हीं दो पदों में जिन्हें सिस्टर व्हाइट ने एडवेंटिज्म के केंद्रीय स्तंभ के रूप में पहचाना है। आरंभ बिंदु को प्रतीकात्मक रूप से 220 वर्षों की कड़ी से 1844 में उनकी पूर्ति के समय से जोड़ा गया है। हबक्कुक के दूसरे अध्याय का समापन 20वें पद पर होता है। इस प्रकार 220 संख्या को अद्भुत गणनाकर्ता एक भिन्न अभिव्यक्ति के साथ चिह्नित करता है, क्योंकि वो पद उस प्रतिरूपक प्रायश्चित दिवस की एक प्रमुख विशेषता की पहचान करता है जो उस तिथि से आरंभ हुआ।
परंतु प्रभु अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने मौन रहे। हबक्कूक 2:20।
एडवेंटिज्म के केंद्रीय स्तंभ का प्रतिनिधित्व करने वाले वे दो भविष्यवाणी संबंधी कालखंड, जो अद्भुत गणनाकर्ता द्वारा सीधे प्रस्तुत किए गए थे, आपस में 220 वर्षों से जुड़े हुए हैं, और यीशु अद्भुत गणनाकर्ता, जो हमेशा किसी चीज के अंत को उसकी शुरुआत से जोड़कर पहचानते हैं, ने 22 अक्टूबर 2019 के संख्या 220 के साथ उनके अंत को चिह्नित किया। पहले स्वर्गदूत का आंदोलन, जैसे कि तीसरे स्वर्गदूत का आंदोलन भी, अंत के समय क्रमशः 1998 और 1998 में आरंभ हुआ, जहां लैव्य व्यवस्था 26 के 7 गुना की पहचान की जाती है। दोनों इतिहासों में अगला मार्ग चिन्ह 220 वर्षों की समाप्ति से चिह्नित है, जो 7 गुना की एक भविष्य सूचक विशेषता भी है, क्योंकि दोनों दर्शनों छाजो और मारे के आरंभ बिंदु 220 वर्षों की एक अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उन्हें आपस में जोड़ती है।
1611 में किंग जेम्स बाइबल का प्रकाशन, वर्मोंट टेलीग्राफ समाचार्स पत्र में प्रकाशित मिलर के संदेश का औपचारिकरण, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रकाशन और आवर फर्म फाउंडेशन पत्रिका में द टाइम ऑफ द एंड का प्रकाशन, ये सभी प्रकाशन थे।
दोनों 220 वर्षीय एवजिंग की शुरुआत और समाप्ति ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में किसी प्रकाशन को दर्शाती हैं। 220 संख्या एक भविष्यवाणी संबंध का प्रतीक है, और ये चारों प्रकाशन इस समानता से जुड़े रहें कि वे प्रकाशन हैं तथा अपनते इतिहास में ज्ञान की वृद्धि कहलाने वे संदेश द्वारा वे।
1611 की बाइबल स्वर्गीय दरबारों से मानव जाति तक सुसमाचार के संप्रेषण का प्रतिनिधित्व करती है। मिलर का संदेश समय की भविष्यवाणियों के संदर्भ में रखा गया था, और हबक्कूक के दो पवित्र चार्ट ये स्पष्ट करते हैं कि मिलर के संदेश को इतिहास की रेखाओं के माध्यम से चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया था। वर्मांट का अर्थ एक हरा पर्वत होता है, और प्रेरणा के अनुसार हरा विश्वास का प्रतीक है।
इस स्वप्न ने मुझे आशा दी। हरी डोरी मेरे मन में विश्वास का प्रतीक थी, और परमेश्वर पर भरोसा करने की सुंदरता और सरलता का मेरी आत्मा में बोध होने लगा। ईसाई अनुभव और शिक्षाएं 28।
मिलर का संदेश औपचारिक रूप दिया गया और निष्ठावान कलीसिया से प्रस्तुत किया गया, क्योंकि अंतिम दिनों में पर्वत एक कलीसिया है।
और ऐसा होगा कि अंतिम दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत पर्वतों की चोटी पर स्थापित किया जाएगा, और वो पहाड़ियों से ऊपर ऊंचा किया जाएगा, और सब जातियां उसकी ओर बहेंगी, और बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर याकूब के परमेश्वर के भवन में चलें, वो हमें अपनी राहें सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि सियोन से व्यवस्था निकलेगी और यरूशलेम से यहोवा का वचन। यशाया 2:3।
मिलर का औपचारिक रूप दिया गया परीक्षण संदेश विश्वास योग्य कलीसिया से आया, और द टेलीग्राफ नामक प्रकाशन किंग जेम्स बाइबल की तरह स्वर्ग से आए संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि टेलीग्राफ शब्द जो दो यूनानी शब्दों से बना है दूर से आया संदेश है। पहला शब्द टेले का अर्थ दूर या बहुत दूर है, और दूसरा शब्द ग्राफो का अर्थ लिखना या अभिलेख करना। दोनों मिलकर अर्थ देते हैं दूरी पर लिखना या संप्रेषित करना। 16 ग्रा में परमेश्वर ने किंग जेम्स बाइबल के निर्माण के माध्यम से अपना संदेश स्वर्ग से प्रेषित किया, और 220 वर्षों के अंत में 1831 में वर्मोंट टेलीग्राफ में पहली बार औपचारिक रूप दिए गए मिलर के संदेश ने भी परमेश्वर का संदेश स्वर्ग से प्रेषित किया। वो संदेश ज्ञान की वृद्धि था, जो 1793 में अंत के समय पर खोला गया था, और जिसने उस पीढ़ी के लिए तीन चरणीय परीक्षण प्रक्रिया उत्पन्न की। वो इतिहास फ्यूचर फॉर अमेरिका के इतिहास का प्रतिरूप था।
1776 में की गई स्वतंत्रता की घोषणा प्रकाशित वाक्य 13 के पृथ्वी के पशु की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है, और ऐसा करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंत में स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध की पहचान कराती है। फ्यूचर फॉर अमेरिका का संदेश, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उस अंत की पहचान करता है जिसे शुरुआत में स्वतंत्रता की घोषणा के प्रकाशन के साथ प्रतिरूप के रूप में दर्शाया गया है। 220 वर्ष बाद 1996 में द टाइम ऑफ द एंड पत्रिका प्रकाशित करने वाले मंत्रालय ने पहले से फ्यूचर फॉर अमेरिका नामित कानूनी इकाई प्राप्त की। उसी वर्ष Our Firm Foundation नामक प्रकाशन में पहले प्रकाशित किए गए लेखों से बनी द टाइम ऑफ द एंड पत्रिका प्रकाशित हुई।
फ्यूचर फॉर अमेरिका नाम वाला मंत्रालय स्वतंत्रता की घोषणा के इतिहास की ओर संकेत करता है, क्योंकि वो प्रकाशन संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत को चिह्नित करता था, और यीशु हमेशा अंत को आरंभ से दर्शाते हैं। उस प्रकाशन का शीर्षक द टाइम ऑफ द एंड 1989 के अंत के समय को तो संबोधित करता ही है, साथ ही उस परिवीक्षात्मक समय के अंत को भी जब मिकाएल उठ खड़ा होता है। प्रकाशन में औपचारिक रूप से प्रस्तुत संदेश दानियल 11:40-45 की मुहर 1989 में सोवियत संघ के पतन अंत का समय के साथ खुल गई, और खुलाए गए वे पद इतिहास की एक क्रमिक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं, जो 1989 से आगे बढ़ती हुई 12वें अध्याय के पहले पद तक पहुंचती है, जहां मिकाएल का उठ खड़ा होना और मानव परिवीक्षा का समापन निर्दिष्ट किया गया है। 1777 जाही मील देते हुए स्वतंत्रता की घोषणा के प्रकाशन से लेकर द टाइम ऑफ द एंड पत्रिका के प्रकाशन तक कुल 220 चुनौती वर्ष होते हैं और आरंभ और अंत एक ही भविष्य सूचक विषयों को संबोधित करते हैं। द टाइम ऑफ द एंड का प्रकाशन उन अध्यायों को संकलित करके किया गया था जो पहले आवर फर्म फाउंडेशन नामक प्रकाशन में लेखों के रूप में प्रकाशित हुए थे और ये उस भविष्य सूचक सत्य का प्रतिनिधित्व करता है कि मिलराइट आंदोलन के आधारभूत सत्यों को जो आवर फर्म फाउंडेशन है थामे बिना 1989 में टाइम ऑफ द एंड पर इंक्रीज ऑफ नॉलेज को समझना असंभव है। पहले और तीसरे स्वर्गदूतों के आंदोलनों के समांतर इतिहासों में अंत का समय के रूप में प्रस्तुत मार्गचिन्ह और संदेश के औपचारिककरण का प्रतिनिधित्व करने वाला मार्गचिन्ह दोनों ही लैव्य व्यवस्था 26 के 7 समय के भविष्य सूचक तत्वों को समाहित करते हैं। समांतर इतिहासों में अगला मार्गचिन्ह संदेश का सशक्तिकरण है जिसे या तो 11 अगस्त 1841 को प्रकाशित वाक्य 10 के स्वर्गदूत के उतरने से या 11 सितंबर 2001 को प्रकाशित वाक्य 18 के स्वर्गदूत के उतरने से चिह्नित किया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 के दूसरे हाय की पूर्ति ने प्रकाशित वाक्य 10 के स्वर्गदूत को नीचे उतारा और प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 के तीसरे हाय की पूर्ति ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के स्वर्गदूत को नीचे उतारा। समांतर इतिहासों में जब स्वर्गदूत उतरता है उसी समय अंतिम वर्षा का छिड़काव आरंभ होता है। उस समय भविष्यवाणी की गई घटना की पुष्टि से संदेश सशक्त हो जाता है। मिलराइटों के लिए ये उस्मानी प्रभुत्व की समाप्ति थी जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 15 में दूसरे हाय के अंतर्गत इस्लाम की समय संबंधी भविष्यवाणी की पूर्ति थी। 144,000 के आंदोलन के लिए वो राष्ट्रों का क्रोधित होना था। इस्लाम से संबंधित तीसरे हाय की वो भविष्यवाणी जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पद 7 में सातवीं तुरही के समय से संबंधित है और जो तब पूरी हुई जब न्यूयॉर्क शहर की विशाल इमारतें ढहा दी गईं। समानांतर इतिहासों के प्रत्येक प्रमुख मील के पत्थर का विस्मयकारी गणक के कार्य से सीधा संबंध है जो 2300 वर्ष और 2520 वर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले दो दर्शनों के बीच के संबंध पर अपनी मुहर लगाता है। स्वर्गदूत के अवतरण पर उठाए गए भविष्योक्त प्रहरी चेतावनी की तुरही फूंकते हैं जिसमें लाओदीकिया के लिए वो संदेश शामिल है जो 1806 25 सखे कार्य पारक मान करता है जिसकी एक बड़ा प्रकाश की मुहर खुलने से सीधे जुड़ा हुआ था। हबक्कुक की दो तालिकाओं का वो मील का पत्थर जिसे 1843 और 1850 की अग्रदूत चार्टों द्वारा दर्शाया गया है जो दोनों 7 बार को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक समानांतर इतिहास में स्वर्गदूत के अवतरण और पहली निराशा के बीच स्थापित हुआ प्रतीक्षा का समय वाला मार्गचिन्ह 1843 की असफल भविष्यवाणी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है जो 2300 वर्षों और 2520 वर्षों दोनों की पूर्ति की भविष्यवाणी थी। मध्यरात्रि की पुकार का संदेश उन दोनों भविष्य सूचक कालों की शीघ्र होने वाली पूर्ति की पहचान था। अंतिम मार्गचिन्ह पर बंद व्यवस्थाकालीन द्वार उन दो भविष्य सूचक अवधियों की पूर्ति को चिन्हित करता है और ये भी दर्शाता है कि जहां से सातवीं या जुबली तुरही बजना आरंभ करती है। प्रत्येक इतिहास का हर मार्गचिन्ह 7 समय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है और 7 समय वो सूत्र है जो दोनों इतिहासों को एक साथ बांधता है और दोनों इतिहास अंतिम वर्षा के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
जो आज्ञा न मानने के कारण वचन में ठोकर खाते हैं उनके लिए मसीह ठोकर का पत्थर है, परंतु जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा किया गया। अस्वीकृत पत्थर के समान पृथ्वी पर अपने कार्य में मसीह ने उपेक्षा और अपमान सहा था। वो मनुष्यों द्वारा तुच्छ जाना और त्यागा गया, दुखों का पुरुष और पीड़ा से परिचित, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। यशाया 3:7। परंतु वह समय निकट था जब वो महिमित किया जाएगा। मृतकों में से पुनरुत्थान के द्वारा वो समर्थ सहित परमेश्वर का पुत्र ठहराया जाएगा। रोमियो 1:4। अपने दूसरे आगमन पर वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु के रूप में प्रकट होगा। जो अब उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले थे, वे उसकी महानता को पहचानेंगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के सामने वो अस्वीकृत पत्थर कोने का सिरा बन जाएगा,
और जिस किसी पर वो गिरेगा उसे चूर चूर कर देगा। जिन लोगों ने मसीह को अस्वीकार किया, वे शीघ्र ही अपने नगर और अपने राष्ट्र को नष्ट होते देखने वाले थे। उनकी महिमा टूट जाएगी और पवन के सामने धूल के समान तितर बितर हो जाएगी। और यहूदियों का विनाश किसने किया? वही चट्टान, जिस पर यदि वे निर्माण करते तो वही उनकी सुरक्षा होती। ये परमेश्वर की तूफ़च जानी गई भलाई थी, ठुकराई गई धार्मिकता थी, उपेक्षित की गई दया थी। मनुष्यों ने अपने आप को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर लिया, और जो कुछ उनके उद्धार का साधन होता वही उनके विनाश में परिणत हो गया। जिसे कुछ परमेश्वर ने जीवन के लिए ठहराया था, उसी को उन्होंने मृत्यु का कारण पाया। यहूदियों द्वारा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने में यरूशलेम का विनाश निहित था। कलवरी पर बहाया गया लोहू वही भार था जिसने उन्हें इस संसार के लिए और आने वाले संसार के लिए विनाश में डुबो दिया। महान अंतिम दिन में भी ऐसा ही होगा, जब न्याय परमेश्वर के अनुग्रह को अस्वीकार करने वालों पर आ पड़े। मसीह, जो उनके लिए ठोकर की चट्टान है, तब उन्हें प्रतिशोध लेने वाले पर्वत के समान प्रकट होगा। उसकी मुखमंडल की महिमा, जो धर्मियों के लिए जीवन है, दुष्टों के लिए भस्म कर देने वाली आग होगी। अस्वीकार किए गए प्रेम और तुच्छ जाने गए अनुग्रह के कारण पापी नष्ट कर दिया जाएगा। अनेक दृष्टांतों और बार बार दी गई चेतावनियों के द्वारा यीशु ने दिखाया कि परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करने का यहूदियों के लिए क्या परिणाम होगा। इन वचनों में वे हर युग के उन सब लोगों को संबोधित कर रहे थे जो उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से इनकार करते हैं। हर चेतावनी उन्हीं के लिए है। अपवित्र किया हुआ मंदिर, आज्ञा ना मानने वाला पुत्र, धोखेबाज किसान, तिरस्कार करने वाले निर्माता, इन सब का समकक्ष प्रत्येक पापी के अनुभव में मिलता है। यदि वो पश्चाताप न करे तो जिस विनाश का वे पूर्वाभास देते थे वही उसका भाग्य होगा। युगों की अभिलाषा 599:6।